प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्व दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन को जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समान नीरतल उज्ज्वल हीरंबर हरदमम वे पर्वा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा ध्यावे शेष 88 उतरे बौदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बौदल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरों विनती करूं डरूं चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूं गुरु देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चो तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊ जो राखो तो ही रहूं जो देव सुख जय इब कै सत गुरु मिले सब दुख आखों रोए चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी होए कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय न समा अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज जो मैं पूत कपूत हूं बोर पिता को लाज मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरे विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सबूर सुरत करो मम साईया हम हैं भव जल माई आपे ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बां हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़ जैसे कागजी हाज का अब तक न दूजी ठोरे परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणी परमात्मा की अमृतवाणी सुनने के लिए एकत्रित होते हैं जिन पुण्यात्माओं पर परमेश्वर की विशेष रजा होती है वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं और मानव शरीर प्राप्त करके भी जो और विशेष कृपा पात्र होते हैं परमेश्वर के वही पुण्यात्माएं सत्संग प्राप्त करती हैं परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में बोलते हैं कहते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ और सतगुर सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना यदि हम मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं परम संत हमें नहीं मिलता है या हमारी भक्ति में रुचि नहीं होती है और हम संसारी कार्य ही करते रहते हैं माता पिता संतान संपत्ति में लिप्त रहते हैं उसके लिए परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि माता पिता तो भाई आगे हर योनि में तुम्हें प्राप्त होंगे जैसे पशु पक्षी की योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिलेंगे यही ममता होगी इसी तरह आपका लगाव होगा एक दूसरे में लेकिन मानव शरीर के अंदर माता पिता भी होंगे और साथ में परमात्मा प्राप्ति भी हो सकती है तो वो शुभ समय और ये एक पुण्यमय शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। मानव जीवन को सफल करने के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। सत्संग में आने से हमारे बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं, हमारे ऊपर युगों युगों के ना जाने कितने पाप कर्मों का दबाव है, ना जाने कितने पाप कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं। उन पापों को नाश करने की बहुत सी अन्य काफी तरीके परमात्मा ने बताए हैं, उन सभी को हमने अपनाना पड़ेगा। हमारे कुछ इस टाइप के पाप होते हैं जो परमात्मा के प्रवचन से, परमात्मा की अमर वाणी के सुनने मात्र से ही वो नाश हुआ करते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो दान करने से उनका नाश होता है। कुछ पापों की ऐसी वैरायटी होती है कि जो नाम के सिमरण से ही समाप्त हुआ करते हैं। कुछ इस प्रकार के पाप होते हैं जो संत यानी सतगुरु के दर्शन करने से ही नष्ट होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए हमने सभी को अपनाना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के एक लीला करते हैं। इस भक्ति पर लगे हुए मानव को जो दिशा दिग्भ्रष्ट होकर के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है, उस भ्रमित प्राणी को परमात्मा यथार्थ भक्ति ज्ञान देकर के उनका उद्धार करने के लिए यहां आते हैं। काल भगवान जो यहां का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इसको ब्रह्म बोलते हैं वेदों में और लोक वेद के आधार से ये ब्रह्म कहलाता है। और संत भाषा में इसका नाम ज्योति निरंजन है, इसको काल भी कहते हैं। इस काल को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है और जिस कारण से ये हमें यहां पर भ्रमित रखता है कि कहीं ये अपने सवलोक चले जाएं और मेरी अक्षुधा कैसे मिटेगी, इस उद्देश्य से ये प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण यानी मनमानी साधना भक्ति पर लगाए रखता है, भ्रमित रखता है। सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी ये मानव तक नहीं आने देता है। सदग्रंथों में वर्णित कुछ होता है, ये प्रचार अपने दूतों द्वारा कुछ ही करवा देता है और भोली आत्माएं फिर उन अज्ञानी जो काल के दूत ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु मुल्ला काजी होते हैं उनसे लोक वेद सुनकर के उस पर आधारित हो जाता है। अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना ना करने से मानव जीवन नष्ट कर जाता है, क्योंकि इस काल भगवान ने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया, प्रत्येक मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की चाह तड़फ है और उसके लिए इतना भी ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। और फिर हम ये भी सुना करते थे, भाई कोई भी संत साधु अगर आ जावे उसका अनादर नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी वेशभूषा में हो, गरीब अमीर बोला बाला सा, उसको भी उसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहा करते ना जाने भगवान किस वेश में आ जा, हम ये भी सुना करते थे कि ना जाने भगवान किस रूप में आ जाता है। तो परमात्मा चारों युगों में घूमते रहते हैं, प्रत्येक युग में एक विशेष जीवन रहकर एक लीला करके जीवन की सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे जन साधारण अपना जो दैनिक कार्य भी करता है, संसारिक व्यवहारिक कार्य भी करता है और परमात्मा की भक्ति भी करे। यानी वो उदाहरण देने आते हैं कि परमात्मा के पाने के लिए ना तो किसी उच्च जाति की आवश्यकता है और न ही किसी त्याग की आवश्यकता है, यानी घर छोड़कर जाने की। जैसे हम ड्रामा सुना करते हैं, घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे, सब इच्छाओं का नाश करके बाहर चला जा, तभी मोक्ष होता है। नहीं, बाहर जाने से भी इच्छाओं का नाश नहीं होता, यह भी भूल है हमारे। इच्छाओं का नाश तो ज्ञान से होगा, भक्ति कमाई से होगा, सच्ची श्रद्धा से पूर्ण संत की शरण में आकर साधना करने से इच्छाओं का नाश होगा। आपने सुना है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। इच्छाओं का नाश भी सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा, तब ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम अभी तक जो साधनाएं करते थे वो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी विष्णु जी और शिव जी और विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी की, फिर अन्य देवी देवता जो भी मिल गया उसी को प्रणाम, उसी की पूजा प्रारंभ। हम अनन्य मन से भक्ति नहीं कर रहे थे, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। व्यभिचारिणी और हमें अव्यभिचारिणी भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी, गीता जी इसकी साक्षी है। गीता जी में क्या लिखा है कि जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए। परमात्मा ने विश्लेषण दिया कि जैसे रजगुण ब्रह्मा जी का की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, साधना करके के जुलुम किए, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया, प्रह्लाद के साथ वो घोर अत्याचार किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरिया। एक तो भक्ति करें, उस भक्ति से ये प्रतिफल मिलता है। अब क्या बताया परमात्मा कि अरणाकुश छाती तुड़वाई, हिरण्यकशिपु छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण का अर्थ होता साधक, एक ब्राह्मण का वैसे सीधा अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, जिसकी परमात्मा में लगन लग जा कि अभी परमात्मा की भक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी कोनी, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है यदि साधना नहीं की। इसको ये सारे ब्राह्मण की डेफिनेशन आते। तो एक तरफ तो भगत बनया, साधना करी, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, काम कसाई कैसे, हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। तो रजगुण ब्रह्मा जी के का उपासक हिरण्यकशिपु वो जुलम किया और राक्षस कहलाया, फिर तमगुण शंकर जी का उपासक रावण था उसने के जुलम किए, ऐसी साधना की तुम सात जन्म नहीं कर सकते। उसने अपना यहां से काट के शरीर शंकर भगवान, तमोगुण शंकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी शक्ति इन भगवानों में है, वो जो का तो फिर जीवित कर दिया, फिर ऐसे 10 बार काट कर दिया, 10 बार वापस दे दिया और अंत में के जुलम किया, पर स्त्री को उठा लाया, क्योंकि दुर्गा ने ही 3 रूप धारण किए थे। दुर्गा जगत जननी कहलाती है, उसी के 3 अंश वचन से ये उत्पन्न हुई थी, जिसको सावित्री ब्रह्मा से शादी कर दी, लक्ष्मी का विष्णु जी से ब्याह कर दिया और पार्वती का शिव जी से नाता जोड़ दिया था। तो यहां बताया है कि अपनी ही माता को यानी लक्ष्मी को उठा लाया, सीता जी को, राक्षस जैसे कर्म किए, दूषित कर्म, इसे बुंडा कर्म और के करेगा यो, राक्षस स्वभाव को धारण किया व मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये चार उपमा दी है, ये चारों रावण के अंदर लागू होती है जो तमोगुण शिव का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का उपासक है, गिरीपुरी सन्यासी औगड़नागा, ये सारे शिवजी के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। तो एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिवजी के द्वार पर सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर सिरासन लगा के 12 वर्ष तक साधना की, तपस्या की। और जब पार्वती जी को देखा उसके मन में दोष आ गया। उसने के सोचा कि श्री शंकर भगवान जी के पास एक भस्म कड़ा है, भस्म कड़ा मांगूंगा और शंकर जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से 12 वर्ष तक शिव जी के द्वार गेट के सामने धरना दे दिया। एक दिन भगवान शिव जी ने पूछा कि बोल क्या मांगता, क्या चाहता है तू उपासक, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। तो भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा भी तथास्तु, मैं हो गया वचनबद्ध, मांग क्या मांगता। तो खड़ा हो गया सीधा सीधे पैरा और खड़ा होते ने बोला ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी साधु संत जंगल में रहता है, कोई हिंसक जानवरों से या राक्षसों से बचने के लिए मांगता होगा, निकाल कर तुरंत दे दिया अगले बच्चा। अब क्या कहता है भस्मागिरी, केले शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अंधेरे का डर लग गया। तो उसी समय शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम रूप बदल गया निकम्मा। अर्यु तो एक बार तेरे सिर पर न्यू कर दिया भस्म, वो क्या था उसमें गुण के जिसके सिर पर ऐसे करके और ये कह दे भस्म, वो फूक देता था, ऐसा करंट बने था उसमें, वचन उसका रिमोट था। अब शंकर जी ने तो पता था तू अपने हथियार का, ये तो एक बार न्यू कर तू मरिया, डांक ठोक दिया, स्पीड खींच दी, आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, दोनों जैसे जोटेंगे पीछे जोटे बाजा गए, ऐसे दौड़े जा रहे और शंकर जी का पसीने आ रहे। पुण्यात्माओं ये कथा हम पहले ही पढ़ दिया करते, शिवपुराण में लिख रखी है। और यह मन मनाया करते अमीन अविनाशी कवें अजर अमर कवें, अरे भगवान स्पीड खेच रहा डर के भाग रहा भगवान शंकर, तो अविनाशी क्यों करोगे, अविनाशी होता कहता ताजा भाई कर, कति असर ना हो इस पे। फिर भगवान पार्वती रूप बना के वहां प्रगट हो गया भस्मागिरी और शंकर के बीच में, जो वो दौड़े जा रहे थे। तो भस्मागिरी ने कहा तू क्यों करेगी अड़े पार्वती, वो बोली मैं आपके लिए आई हूं, और क्यों भाग रहे हो, रुक जा, वो तो वापस आवा को नहीं, शंकर तो शंकर जी तो को ना, उसने बेरा है इसमें कितनी शक्ति है, आ जा आप यहां बैठेंगे। वो तो खाड़े पार्वती खातिर कर रहा था, उड़े रुक गया, ला दिया फुल ब्रेक, वहीं रुक गया। और फिर पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा, कुछ प्यार कर। भस्मागिरी कहने लगा मैं तो साधु तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस डोंस ना करना आता। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि आज मैं सिखाऊंगी, इस पैर न आगे कर, इस पैर न पीछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इस ने ऐसे कर, इस हाथ को और ऊपर कर, जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था ना भस्म कड़ा, कह ली और कर और कर, जब सिरपा लिया ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी का टंटा काटा। अब उस भस्म कड़ा ने ठाकर भगवान विष्णु रूप धारण करके पूर्ण परमात्मा शंकर जी के सामने खड़ा है, उसका भाज्या जो था कति स्पीड थे आगे पहुंचे, कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, ए शंकर जी रुक जा, अकाजा भागले विष्णु भाजा भाजा मर गया अस्ते, अ क्या हो गया भाग ले बस पीछे आजा, भागता भागता बताऊंगा। तो भगवान विष्णु कहने लगा जिस डर से तुम भाग रहे हो उसको मैंने मार दिया, उसका ना जच्चा भगवान शंकर का क्यों कैसे मार दिया। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्वती रूप बनाया और देख यू कड़ा तेरा यू ले रखे मना हाथ में देख तले। तब उसने देखा धैर्य सा बांध के सचमुच कहा सचमुच कहा है वो मरा हुआ। वो मरा हुआ देख लिया ना जब शंकर का दिल धड़कना बंद होया अकचाल दिखाऊ देख यू मरा पड़ा। तो पुण्य आत्माओं यो वो उसके बाद वो बसमा गिरी बसमा असुर कहलाया तमोगुण का उपासक। अब तीसरा गुण रह गया सतगुण विष्णु की उपासना करने वालों की क्या दशा हुई। एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे एक कुंभ का मेला लगा और उसमें एक समय निर्धारित करते हैं ये आप पे कुछ सोन को सोन करके कि इस समय जो नहा लेगा इस स्थान सरोवर में या दरिया में उसका मोक्ष हो जाएगा उसके कल्याण हो जाएगा। उस धारणा से ये क्या करते हैं सभी साधु संत जिनको हम साधु संत कहते हैं गिरी पुरी सन्यासी कनपाड़े नागा वैष्णो ये सारे तीनों गुणों के उपासक होते हैं। ये वहां चले जाते हैं उस स्थान पर और अलग अलग अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे गिरी अपने ग्रुप में पुरी अपने में नागा न्यारे और सन्यासी अलग से कनपाड़े अलग से बिना कनपाड़े नाथ अलग से और वैष्णो साधु विष्णु जी के उपासक अलग से। तो ऐसे ही वहां जाकर के कई हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए। जब स्नान करने का समय आया वो पर भी निकट आई सभी अपने अपने ग्रुप के साथ पूरे के पूरे दल बल के साथ चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने। नागा बिल्कुल नगर रहते हैं शरीर पर राख लपेटे रखते हैं। वो जाकर के हर की पैड़ी पर छा गए कई हजारों की संख्या में थे वे। तो वो नहाने की तैयारी करने वाले थे पीछे से वैष्णु साधु आ गए सतगुण विष्णु के उपासक वो भी कई हजारों की संख्या में थे। उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना पहले हम स्नान करेंगे। हम सर्वश्रेष्ठ हैं हम विष्णु जी के उपासक हैं हम सबसे श्रेष्ठ हैं तुम बाहर आओ। नागा कहने लगे नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पहले स्नान करेंगे। हम त्यागी और वैरागी हैं हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते हम नी इच्छा हैं और हम स्नान करेंगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णो साधु फिर गुस्से में हो गए कहने लगे रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो टट्टी के हाथ धाना ने धोना टट्टी के हाथ बिना धोते शर्ड फेरडो बार मरो तुम हम पहले नहाएंगे हम श्रेष्ठ हैं। अब नागाओं पर इतनी टार कड़े उठे थी फेर लिया मुंह उल्टा हो गए न बोले आजा तुम न हम नुहावेंगे और मुक्को मुक्का लठम लठा तलवार निकाल ली तीर मारे यानी 25,000 उस घटना में 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कतलेआम कर डाला कतलेआम 25,000 कटका मर गए और गंगा के अंदर सौ सौ ही नजर आ रहे हैं जैसे महाभारत के युद्ध में विघ्न होया था। अब यहां बताते हैं उस परमात्मा की अमरवाणी में तीर तुपक तलवार कटारी जंदड़ जोर बदावे हैं हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग लावे हैं काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की यह वाणी 600 साल पहले बोली गई थी कि इन तुम संत कहते हो ना इनके तो दर्शन भी ना करने चाहिए और जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी पूजा करने वालों को क्या लिखा गीता जी में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये राक्षस नहीं एक नानक ऊपर कटके मर गए कतलेआम कर दिया दया भी कोई ना इनके काटे शीस नहीं दिल करुणा दिल में दया कोई नहीं और ये जग में साधकों आवे हैं संत कहे हैं इनको और जो इनके दर्शन को भी जावे क्योंकि दर्शन करना वो जागा जो इनका चेला बन जाएगा उनको फिर यह गुटी पे आ गए वह नरक में भेज देते हैं। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए जा रहे थे, बड़े साजो बाज के साथ आगे आगे गंधर्व उनके सामने गाने गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, पीछे देवता आ रहे थे अपने राजा के सम्मान में, सभी अपने हिसाब से उनके तारीफ कर रहे थे। उधर से दुरासा जी को किसी ने उनको एक माला भेंट की थी, उस माला को और ऋषि दुर्वासा ने वो अपने सिर पे जो रखी हुई थी माला वो उठाकर उसको हाथी पर बैठे हुए इंद्र को फेंक दी। इंद्र ने वो हाथ में ले ली, हाथ में लेकर के फिर उसने वो क्या करता है, हाथी के मस्तिष्क रख देता है, इतना चौड़ा हाथी का मस्तिष्क, पूरा प्लेटफार्म सा उस आगे उसके ऊपर रख देता है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज जैसे कोई फल खाया उसके छिलके भी वो वहां रख देता था हाथी के गुद्दी में, और हाथी फिर अपने सूंड से उनको पकड़कर जमीन पर फेंक देता था, ऐसा उसकी क्रिया थी। तो उसने इंद्र ने अपना वो माला जो उसने फेंक की उसने वह ले ली, उठाकर हाथी के उस गुद्दी पर रख दी मस्तिष्क पर पीछे, और हाथी ने सूंड से वो पकड़कर बाहर फेंक दी। दुर्वासा सब देख रहा था। अब दुर्वासा ने कहा कि ए इंद्र, तू राज पा करके अभिमानी हो गया है, तैने मेरे द्वारा दी हुई एक भेंट को, भेंट का निरादर किया है, तेरा नाश हो जाएगा, तेरा तू राज से वंचित हो जाएगा, तेरे राज तू निर्धन हो जाएगा, ये श्राप दे दिया। अब उस इंद्र ने आत्मा भी जोड़े, जी मेरे से गलती बन गई, मन तो पता नहीं था, मैं तो अब ये फूलों की माला थी, मैंने सोची आपने दे दी, मैंने यहां रख दिया, हाथी नहीं उठा के नीचे डाल दी, मेरी क्या गलती है, क्षमा करो, नहीं हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र का राज भी छिना गया, जंगल में जाकर टाइम पास किया, उसने बाजीगर छोड़कर राक्षसों ने उपाक्रमण कर दिया। अब इनको हम संत मान्या करते, सब डरिया करते, भाई साधुवान नहीं बोलना चाहिए, ये क्या के शब्द बोल देंगे, ये नाश करने थे ये सारे। और ऋषि दुर्वासा दो श्री कृष्ण जी का गुरु भी था, आध्यात्मिक गुरु। अब एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बणी में बैठ गया जाकर, बणी में, बनी होता है एक मिनी फॉरेस्ट, यानी पहले गांव के आसपास चारों तरफ बहुत ज्यादा जंगल होते थे, वृक्ष होते थे, वो होते थे लगभग आधा किलोमीटर की चौड़ाई में अराउंड द विलेज, पूरे गांव के चारों तरफ। तो उसमें उस बनी में कई कई में दो दो एक एक किलोमीटर तक लंबा भी हो जाता था वो बनी, उस बन में जाकर दुर्वासा जी ने डेरा ला लिया। और दुर्वासा जी के विषय में ये सुप्रसिद्ध था कि यह बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सिद्ध पुरुष है और त्रिकालदर्शी है, लेकिन श्री कृष्ण जी की समर्थता को फाइनल मानकर यादव लोग इतने अभिमानी हो गए थे कि वो श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त कोई भी संत महात्मा भक्त आता उसका आदर नहीं करते थे, उसको ठीक से डील नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं। तो इसलिए जब उन बच्चों को पता चला, नगर निवासियों को पता चला कि दुर्वासा नाम के एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष नगर के पास बैठे हैं, तो श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युमन और कुछ एक उसी हम उम्र के 30-40 साल की उम्र हो रही थी उनकी, उसी की हम उम्र के कुछ व्यक्तियों ने एक फैसला किया, एक बकवाद सुजी। वो कहने लगे भाई नू कहे हैं कि श्री दुर्वासा जी ऋषि त्रिकाल दर्शी हैं, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण जी का पुत्र था, प्रद्युम्न को एक गर्भवती स्त्री का सांग करवा दिया, यानी पेट का ऊपर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा हा कढ़ाई, छोंक छांक लाण की कढ़ाई हुआ ना छोटी छोटी रसोई में लोहे का, वो कड़ा बांध दिया पेट पे और पाछा रस्सी से मजबूत बांध दिया, और उसके ऊपर के गुदड़ सा यानी थोड़ा थोड़ी कोई मोटे कपड़े लपेट के कपड़ा बांध दिया उसके ऊपर। फिर वहां की जो लेडीज ड्रेस थी उस समय की वह परा दी, सारे सिंगार सिंगूर कान कुन्ना के उलझा दिए उसमें, और एक उसका पति बनकर 10-5 और भक्त उसके साथ हो लिए। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे रिसीवर, ये व्यक्ति है या इसकी पत्नी है, और इनके शादी के लगभग 10-12 वर्ष के बाद आश रही है। अब ये 10-12 वर्ष के बाद गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे लड़का होगा या लड़की। आप बताइए रिसीवर इनके क्या होगा। तब दुर्वासा ने देखा अपने ध्यान से कि ये तो बकवाद कर रहे हैं, ये स्त्री नहीं पुरुष है और कढ़ाया बांध रहे हैं, इतने कि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर जाती है। दुर्वासा एकदम क्रोधित हो गया कि ये मजाक करने आए हैं मेरे साथ, श्राप दे दिया कि इससे ये जो गर्भ बना रखा है इससे यादों कुल का नाश होगा, थरा नाश होगा। अब भाई उनने अब मुश्किल माच की बालका ने बाबा जी ने तो गलत बात कह दिया तो मर गए, और निकाला चिमटा और करी लाल आंख, अब वो भाग लिए। अब नगरी में यह बात फैल गई पूरी द्वारका में कि भी दुर्वासा जी के साथ बच्चा ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा का श्राप तो भाई तोब का गोला है। अब ये तो पूरा होगा, नाश हो गया, कति इन्हों लिख कह दिया थरक या दो कुल का नाश होगा। चिंतित हुए फिर उन्होंने देखा कि हमारे गुरु जी भी हैं और हमारे राजा भी हैं, श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं। कुछ ये कहने लगे हमारे सिर पे भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, हमने किसका डर है, क्यों चिंता करते हो। चलो फिर भी कहने लगे भी नहीं, श्री कृष्ण जी से इस बात का इस प्रार्थना करते हैं, उनका आदेश लेते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए, सभी नगर निवासी चिंतित थे और सारी कहानी बताई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से माफी मांगो, वही अक्षमा करेगा। बच्चों को ले गए, अगदी बालक से गलती होगी माफ कर दो, आपके बच्चे हैं, गलती से इन्होंने आपके साथ मजाक कर दिया। दुर्वासा बोला नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब ये वचन मैं वापस नहीं ले सकता, अपने बच्चा ने समझाया करो। अब वो नगर निवासी फिर वापस आ गए, वह तो पक्का होगा, फाइनल हो गया। पूरे नगर में चूल्हा नहीं चढ़ा, चूल्हा नहीं जलाया, किसी ने अनहार बंद हो गया, किसी ने नहीं खाया, नाश होगा। तो फिर श्री कृष्ण जी के पास गए, हे भगवान आप ही समाधान करो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, देखा गया तो वह गणेश चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जी ने कहा भी ऐसा, देखो ध्यान मेरी बात सुनो, किस चीज से हमारा नाश होगा, इस कढ़ाई से जो पेट पर बांध रखा था, गर्भ का सांग कर रखा था, और उन कपड़ों से, उन कपड़ों को जलाकर उस राख को सवा करके जमुना में डाल दो, और इस लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा के इसका चूरा बनाकर प्रभासक क्षेत्र में और इस जमुना में यमुना में डाल दो नहर में। ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी, ये कढ़ाई ये गुदड़ गर्भ जो कपड़े नहीं रहेंगे तो फिर हमारा नाश कैसे होगा। सब बड़े खुश हो, एक वाह भगवान आपने तो कमाल कर दिया, सही है इसका समाधान बता दिया। तो क्या किया, वो कपड़े तो फूक के गेर दिए यमुना में प्रभास क्षेत्र में, और उस कढ़ाई को घिसाना था पत्थर पे। अब उस कढ़ाई को घिसा में नंबर ला दिया भाई रोजाना के 20 आदमियों का कि तुम इसको बारी बारी घिसाओ, चूरा बना दो कति सारे के सारे का। तो उनके वो कड़े तो नारे तोड़ दिए, दो कड़े पकड़न के होते हैं एंडल टाइप, वो तो दे दिए अलग व्यक्ति आते हैं भाई तुम कितने देर में घिसा कर इसका चूरा बना के जमुना में डालना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और कुछ 50-100 जो उनने अपनी सेवा लगा ली डेली 10-10 मिनट आधा घंटे वो ऐसे घुम घिसावे, वो पूरा कढ़ाया घिसा के, छोटी सी कढ़ाई थी वो घिसा के और चूरा बना के यमुना में डाल दिया नहर में। उधर से एक कड़ा भी घिसा के डाल दिया, लेकिन एक कड़ा किसी आलसी के हाथ में आ रहा था, उसने कुछ घिसाया कुछ ना घिसाया और फेंक दिया जमुना में, होगी ड्यूटी पूरी। अब वो घिसा घिसाने से चारों तरफ से चमक गया था वो कड़ा, एक मछली ने कोई खाद्य पदार्थ जान के वो कड़ा खा लिया और बाकी जो चूरा गिरा था यमुना में यमुना दरिया में उसका पठेरा जान गया। ये सरकंडे हुआ अगर ना सरकंडे, पहले बच्चे लिया करते काट के कलम बनाया करते उनते पठेरे जैसे होता है, वो सरकंडे जाम गए और वो इतने तीखे पत्ते हो गए तलवार कैसे पत्ते ब्लेड जैसे पत्ते तीखे। उधर से वो मछली पकड़ दी एक शिकारी ने, एक मछियारा था उस शिकारी मांसाहारी था, तो उसने वो जाल डाला मछली आ गई मछली काटी तो उसमें से वो चमकीली वस्तु निकली। उसने सोचा ये क्या चीज है, चांदी है या सोना, ये क्या चक्कर है, मैं दिखाता हूं लोहा है। तो उसने सुनार को दिखा, सुनार बोला भाई सोना चांदी नहीं है लेकिन लोहा बहुत बढ़िया है यो। तो शिकारी था उसके वो तीर रखता था, उसने लोहार से कहा कि कारीगर मेरा ये एरो बना दे इसका तीर का, इस बाण का तीर एरो बना दे आगे आगे की पोली सी वा और जहर में बुझा के बना दे विषाक्त बनवा दी, और वो अपना तीर संभाल कर रख लिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो चूरे का तो वो सरकंडे जाम गए उसमें तीखे पत्ते ब्लेड कैसे पत्ते हो गए, और उधर से कुछ दिनों के बाद 56 करोड़ यादव थे टोटल, उनकी आपस में खेचातानी शुरू होगी, जरा सी कोई बात कह दे लठम लठा एक दूसरे ने मार करे हत्या होने लाएगी, जवान बालक वैसे बीमार होकर मरण लग गए। तो जब पहले लोग इतने बुद्धिमान होते थे भगवान से डरने वाले होते थे, नगरी में कोई उत्पात शुरू हो जाता किसी भी प्रकार का आपसी लड़ाइयां शुरू हो जाती तो वो साधु संतों के पास जाते थे और समाधान पूछते थे, तो जैसा जिसको ज्ञान था वो बता दिया करते थे। तो सारी नगरी में यह चिंता हुई भी की बात होगी, किसी ने किसी का बोल अच्छा नहीं लगता, ना बड़े छोटे की लाज रही शर्म रही, हाहाकार मच रहा है क्या चक्कर पड़ गया, रोजाना किसी ना किसी कोने में झगड़े हो रहे हैं, छोटे मतलब जवान बच्चे की मृत्यु हो रही है, हाहाकार मच रहा है, पता नहीं बेचैनी सी होगी ये सभी को क्या कारण है। तो नगर के मौजूद व्यक्ति 100-200 इकट्ठे होकर फिर श्री कृष्ण जी के पास गए क्योंकि यादों के गुरुजी थे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई, भगवान पता नहीं क्या हो गया नगरी में, कोई किसी की शर्म लाज नहीं रही, बालक नौजवान आपस में थोड़ी सी बात करते हैं, झगड़े कर लेते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जुल्म हो गया। वैसे भी प्रतिदिन किसी ना किसी कारण से मृत्यु हो रही है नगरी में, हाहाकार मच गया। इसका कारण तथा समाधान बताओ प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कारण तो यह है कि दुर्वासा का श्राप अब फलीभूत हो रहा है, अब सभी नगर निवासी कहने एकदम घबरा गए कि क्या करें भगवान, फिर समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ तुम प्रभास क्षेत्र में और जमुना में नहाओ, यमुना में स्नान करने से तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। ये तीन ताप के अंतर्गत आता है, कोई किसी को श्राप दे दे और या कोई देवरुष्ट हो जाए, कोई जंतर मंत्र कर दे, किसी में गाल गलवा दे, भूत बात छोड़ दे, ये भी तीन ताप के अंतर्गत ये पीड़ाएं होती हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये तीन ताप के अंतर्गत और दुर्वासा जी का दिया हुआ श्राप अफलीभूत हो गया, हो रहा है, अब ये मैचोर हो गया, जिस कारण से सब कुछ हो रहा है। और इसका समाधान ये है कि तुम सारे के सारे जाओ नर यानी मेल यादव और जमुना में नाओ यमुना में, और तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा सब श्राप कट जाएगा, तुम्हें सुख हो जाएगा। अब सब ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके गुरु भी थे और उन्हीं को वो फाइनल माने हुए थे, उनकी आज्ञा का पालन करके सभी नर यादव मेल यादव यानी छोटे नवजात शिशु भी जो लड़के थे उनको भी साथ ले गए कि मेरे बालक पर शराब ना रह जाए, और वहां चले गए नहाने के लिए प्रभास क्षेत्र में, जहां पर वो कढ़ाहे के साग जमुना में डाले थे, और वहां उनके वो इतने बहुत लंबे क्षेत्र तक सरकंडे जम गए थे। उस दरिया में पहले स्नान करें जाकर, सारे सब स्नान करके बाहर आवे, और स्नान करके बाहर आते ही वो जो नगर में पहले से छोटी मोटी बातों से उनकी मन मुटाव चल रहा था, वे फिर शुरू कर दें। बाहर आते तन मुझे ऐसे बोला था, तू के बन रहा है राजा, तो लठम लठा मुक्का मुक्का, फिर वो सरकंडे जो थे वहां पर उग रहे थे, वो पठेरा सा उसने पाड़े और न्यू मारे, वो लपेटा लग गए और खींच दे, गर्दन धड़ से अलग हो जावे। उस पठेरे ने, उस सरकंडा ने, पठेरे जैसा ही सरकंडा होता है, पठेरा आम देखने को मिल जाता, सरकंडे कम थे इसलिए बता रहा हूं। तो उन सरकंडा ने पाड़े और ऐसे घुमा कर मार दे एक दूसरे के, उसकी उसके गर्दन में लग जाए, उसकी उसमें, दोनों खींचते दोनों मर जाए, यानी वहां कतलेआम हो गया। 56 करोड़ यादव कटके मर गए आपस में, गए थे श्राप मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण जी से समाधान लेकर, और हो गया नाश, श्राप नहीं खत्म हुआ, यादव खत्म हो गए। विष्णु पुराण में लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे, श्री कृष्ण भी वहां चला गया जहां उनका नाश हो रहा था, हो चुका था। तो वहां जाते श्री कृष्ण जी ने भी वह सरकंडे पाड़े, वह मूसल बन गए, मूसल भारा भारा। श्री कृष्ण ने वो बचे हुए यादों को खुद मार डाला, यादों का बीज नाश हो गया उस दिन। ये बाद में जो यादव अब वर्तमान में है, ये वो गर्भवती जो स्त्रियां थी वो बाद में बचे हुए थे, उनसे फिर ये दोबारा यादव कुल प्रारंभ हुआ। तो वहां दुर्वासा ने के वचन ते यादों का कुल नाश हो गया। फिर श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश थे, सब यादों का जब नाश हो लिया, सारे मर लिए, वो जाके एक पेड़ के नीचे लेट गया, एक घुटने पर दूसरे पैर को रख के, तलवा सामने ऐसे था, और जिस उस एक तलवे में श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था, पद्म इतना चमकित जैसे किसी के तेल हो जाता है, ऐसे पद्म होता है, था उनके खाल में मंडा हुआ, भगवान का दिया हुआ, गॉड गिवन। तो उस पैर में पद्म जो था उसकी इतनी चमक थी जैसे 100 वाट का बल्लब हो, और दिन की रोशनी में भी वो चमक रहा था, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे वो लेटे हुए थे उस वृक्ष की टहनियां झुरमट नीचे जमीन पर तक झुकी हुई थी। एक शिकारी जिसने वो कढ़ाई का कड़े का और अपने तीर का एरो बनवा लिया था, तीर बनवा लिया था, विषाक्त तीर वो एरो बनवा लिया था, तीर अपने बाण का, वो सुबह से घूम रहा था कोई शिकार करने के लिए, कोई हिरण मृग मारने के लिए, लेकिन कोई हिरण मृग उसने दो पैर तक नहीं मिला। वो ऐसे तैयार किए घूम रहा था कि मृग दिखकर ठोक दूं। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटों के अंदर से परले पार कोई चीज चमक रही है। वो था तो श्री कृष्ण जी के पैर का पद्म, और उस शिकारी ने सोचा ये मृग खड़ा है और मृग की आंख चमक रही है हिरण की। उसने आव देखा ना ताव देखा, वो निशाना साध दिया उस चमकीली वस्तु को मृग की आंख जान के, और वो तीर मार दिया विषाक्त, वो श्री कृष्ण जी के तलवे में जा लग गया पैर में। तो उसने श्री कृष्ण जी ने जो पीड़ा हुई, पीड़ा के कारण वो कर रहा है, मर गया रहे मर गया रहे मर गया रहे, क्या किसने मार दिया। तो शिकारी डर गया, भाई मानुष मर गया है, तो मनुष्य मर गया, भाग्य गया, इधर से देखा तो वो द्वारकाधीश मोर मुकुट सिर पे और तड़फ रही है। हाथ जोड़कर वो शिकारी कहता, प्रभु मेरे से गलती होगी, धोखे से हो गया, मैंने ऐसे ऐसे आपके पैर में या चमकीली वस्तु थी, मैंने मर्ग की आंख जान के धोखे से तीर मार दिया, मुझे माफ करो प्रभु, मेरे से धोखा हो गया, मेरे से गलती होगी, जुल्म हो गया। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई शिकारी तेरा दोष नहीं, ये तेरा और मेरा पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। अब वो कहने लगे, अब श्री कृष्ण जी ने जब ये बात कही कि तेरा और मेरा पिछला जन्म का कोई अकाउंट था, यो क्लियर हो गया, लेन देन था आपका और मेरा, हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा शिकारी ने कि हे भगवान, आप राजा और मैं एक रंक, आपका और मेरा के हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तू बाली था, बाली, और मैं रामचंद्र था, दशरथ पुत्र, तो सुग्रीव का भाई बाली था, और मैंने तेरे को ऐसे ही मारा था वृक्ष की ओट लेकर, धोखा करके तेरे साथ, तो तेरा मेरा टीट फॉर टैट बराबर हो गया। और कहने लगा, तू अब यहां से खिसक जा, न तने गढ़ देंगे वह भीम, और भाई कोई संदेशा मेरा भिजवा दे किसी के माध्यम से उन पांडवों के पास, वो मेरे रिलेटिव है, और यहां आ जाएंगे, उनको बता देना जल्दी बुलाए। तो उसने ऐसे किसी के माध्यम से संदेशा भिजवाया, तो वापस आए। तो पुण्य आत्मा, इस कथा से हमने बहुत कुछ जानना है। कहते हैं, बदला कहीं ना जात है तीन लोक के मां, और सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक ले जा, बदला तो छोड़ वो तो खत्म हो, पूर्ण संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कबीर जी जैसे परमात्मा मिल जावे, ऐसे उनके ज्ञान देने वाले आदेश जिनको हो वो संत मिल जाए तो वो ही इष्ट हमारे यहाँ प्रारब्ध के कर्म को टाल सकते हैं, प्रारब्ध को कैंसल कर सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। कहते हैं जरा सा भी तिल के समान भी संस्कार में परिवर्तन नहीं हो सकता, जो किए हुए कर्म आधार से तुम्हें प्राप्त है, चाहे प्रारब्ध में संचित है क्रियवान है। कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे, जो प्रारब्ध के कर्म है उनमें से कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण संत इस संस्कार में परिवर्तन कर सकता है। तो यहां बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। तुम किन भगवानों का भजन करते हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं होते। अब जैसे श्री रामचंद्र जी ने श्री बाली को एक वृक्ष की ओट लेकर के धोखे से मारा था, क्योंकि बाली में इतनी शक्ति थी, अगर आमने सामने कोई युद्ध करता था तो आधी पावर बाली में चली जाती थी सामने वाले विरोधी की, शत्रु की। पहले तो श्री राम जी ने आमने सामने युद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन फिर श्री राम जी की शक्ति अक्षीण होने लगी, तब उसको ध्यान आया सुग्रीव की बात का कि बाली के सामने आमने सामने होकर युद्ध नहीं करना, इसमें ऐसी पावर है, तो तुरंत वृक्ष की ओट ले ली और फिर मारा था। तो इस प्रकार पुण्यात्मों प्रसंग यह चल रहा था कि भक्ति भी करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर या अन्य देवताओं की जो पूजाएं करते हैं वो करते हुए भी विफल होती हैं, निष्फल है उनकी। जैसे दुर्वासा जैसे महात्मा, महान आत्मा पूरे प्रसिद्ध हो रहे, पूरे क्षेत्र में, पूरे जो है ना ब्रह्मांड में उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। और क्या थी उसके पास? सिद्धियां थी, ये बद्दुआ देने की पावर थी जिससे वह पूरे प्रभु पा करे थे, और उनको महर्षि कहा करते थे, एक दूसरे का नाश कर दे उनको महर्षि कहते थे। और परमात्मा कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीचे, 56 करोड़ या दव कटे वहां मची रुद्र की कीच। कहते हैं बच्चा ने मजाक कर दिया के बिजली पड़गी, धमका दे हो भाई खबरदार आ गए ऐसी गलती करी, इनके माँ बाप ने बुलाओ और समझाओ, ना दो डंडे मार दे हो गणत गणे है, और केस राप दे दिया कि थारा नाश होगा, कुल नाश होगा तुम्हारा, या दो कुल का हो गया नाश। तो यहाँ परमात्मा लताड़ रहे हैं कि ऐसे नीच जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे, पहुंचे भी मानते थे, दुर्वासा कोपे यानी क्रोधित हुए और समझ न आई नीच, थोड़ी सी भी निविवेक से काम लिया तो क्या बोलने जा रहा है, तेरे शब्द में कितना परमाणु बम है, और 56 करोड़ यादव मर जाएंगे, बालक छोटे छोटे कट कट के मरेंगे। समझ न आई नीच और 56 करोड़ यादव कटे वह मची रुधिर की कीच, यानी खून की गारा माचगी, वहां पर लाशों की बेशुमार लाश होगी। तो यहां क्या बताते हैं, कटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नाला कांगे कहते हैं, कोई शिष्य भी बन जाओ नवीये गुट्टी पावे, ऐसा ही उनको शिक्षा देते हैं वो। अब आगे पुण्यात्माओं ये है कि जैसे गीता ज्ञान देते समय, क्योंकि अभी तक इस दास पर कृपा की परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने, उसके बाद इस दास की ज्ञान वाली अखियां खुली, उन अखियों के आधार से इस दास ने देखा गीता जी का ज्ञान किसने दिया, श्री कृष्ण जी ने दिया? नहीं, सभी ये मानते थे कि श्री कृष्ण ने ज्ञान बोला। नहीं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, जो 1000 भुजा का भगवान है, इसने बोला वो श्री कृष्ण का शरीर यूज किया बोलते समय, उसमें प्रवेश कर गया प्रेतवत। और अभी तक सभी यही मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला। अपुण्य आत्माओं, तो ये अर्जुन ने भी यही मान रखा था कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान कहा। तो जब गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में कहा है कि अर्जुन, तो लाभ हानि की चिंता छोड़कर, जय पराजय की चिंता छोड़कर युद्ध कर। और फिर 37 में कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग को जाएगा, और यदि तू विजयी हुआ तो राज्य का सुख भोगेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू। अब देखिएगा थोड़ा सा, आपको गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। श्री मद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जय दयाल गोविंद का इसके, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और गीता जी, श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 38 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 श्रीमद भगवत गीता 37 श्लोक। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण से हे अर्जुन, युद्ध के लिए, तू युद्ध के लिए निश्चय ही खड़ा हो जा। 38 में क्या कहा है कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा, यानी तेरे थरक तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा। अपुण्य आत्माओं, श्लोक नंबर 37 में तो कह रहा है गीता ज्ञानदाता, यु काल के लाभ आनी और जय पराजय की चिंता छोड़कर तू युद्ध कर ले। और तुरंत ही लाभ आनी बता रहा है कि यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जागा, और जीत गया तो राज का सुख भोगेगा। लाभ आनी तुरंत बताकर युद्ध करने के लिए कह रहा है अर्जुन को, लाभ आनी छोड़कर युद्ध कर ले। अपुण्य आत्माओं, बगैर लाभ के कौन सिर फड़वावे, किस लिए, किसके सिर में दर्द लठ बजावे, युद्ध करे। अब यहां स्पष्ट किया है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तो युद्ध कर ले। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण मान, यानी वो तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, यानी गीता ज्ञान दाता का आदेश मान के युद्ध किया।